त्रिलोक सार लेक्चर नंबर 12। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोए सौवसाहूणं, बलगोविंदसिहामणि किरणकलावरुणचरणनः किरणं विमलयरणेमि चन्दं त्रिभुवनचन्दं नमंसामि। आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती विरचित यह त्रिलोकसार नामक ग्रंथ है और उसकी हिंदी टीका को हम पढ़ रहे हैं। संख्यात असंख्यात और अनंतों का हमने देखा था स्वरूप और उसके जो भेद प्रभेद उसकी भी चर्चा की थी। अब ये जो 14 धाराएं हैं उसकी बात यहाँ चलेगी। 14 धाराओं के नाम हमने देखे थे, उसमें सर्वधारा, समधारा, विषमधारा, कृतिधारा, अकृतिधारा, कृतिमातृकधारा, अकृतिमातृकधारा, घनधारा, अघनधारा, घनमातृकधारा, अघनमातृकधारा और फिर वो द्विरूप धारा वर्गधारा जो है ना, के द्विरूप वर्गधारा, द्विरूप घनधारा और द्विरूप घनाघनधारा, ये ऐसे अलग अलग धाराएं हैं। अभी यहाँ हम 51 पृष्ठ पर आए, 51, और यहाँ विषम धारा संबंधी जो अभी गाथा है उसको पढ़ेंगे, गाथा नंबर 56। एगा दिवि उत्तरिया विषमारूण केवल वसाणा, रुवजुदम अवरम अवरम वरम वरम हो दिशौ अथ। एकादिद्युत्तरा विषमारूपो न केवलावसाना, रूपयुतमवरम अवरम वरम वरम भवति सर्वत्र। अब यहाँ विषम धारा का स्वरूप बता रहे हैं। जो अभी हमने गाथा पढ़ी है उसका अर्थ इस प्रकार है। देखो, एक के अंक से प्राप्त कर, क्योंकि एक भी विषम संख्या है तो एक से शुरू होकर, तो एक के अंक से प्राप्त कर दो दो की वृद्धि को प्राप्त होती हुई केवल ज्ञान से एक अंक हीन पर्यंत विषम धारा होती है। केवल ज्ञान जो है वो अंतिम जो उत्कृष्ट अनंतानंत का भेद है वो सम संख्या है और उसमें एक कम करो वो विषम संख्याओं का अंतिम स्थान है। तो विषम धारा वहां तक है, एक से शुरू हुई है और केवल ज्ञान में एक कम तक वो रुक जाती है। समधारा कहाँ से शुरू हुई थी याद है ना? समधारा का पहला स्थान दो और अंतिम स्थान केवल ज्ञान, तो उसमें भी इतने है स्थान हो गए, इसमें भी उतने ही स्थान। और विषम यानी और समय नहीं वन। हाँ, देख पेज नंबर 51 पर हम चल रहे हैं। अभी हमने गाथा पढ़ी थी 56 नंबर की और उसी का गाथार्थ पढ़ रहे हैं। ये अपनी बात विषम धारा की चल रही है। कल हमने समधारा की बात देखी थी। सम का अर्थ होता है इवन नंबर्स और विषम का अर्थ होता है ऑड नंबर्स। तो सभी इस धारा में सभी संख्याएं जो है वो ऑड यानी विषम संख्या है, एक से शुरू होकर 1, 3, 5, 7, 9 आदि कहाँ तक होगी? तो केवल ज्ञान में एक हीन तक, वो उसका अंतिम स्थान होगा। विषम धारा का अंतिम स्थान केवल ज्ञान माइनस वन। देखो यहाँ गाथा पढ़ते हैं, पेज नंबर 51। एक अंक से प्राप्त कर दो दो की वृद्धि को प्राप्त होती हुई, जैसे हमने समय में भी ऐसा था कि दो से शुरुआत की थी, 2+2 4, 4+2 6, 6+2 8, इस तरह से दो दो से वृद्धि वहां भी थी, यहाँ भी दो दो से वृद्धि है, परंतु एक से शुरू होकर। तो एक में दो डालो तो तीन हो गए, फिर उसमें दो अधिक करो तो पांच हो गए, उसमें दो अधिक करो तो सात हो गए। तो दो दो की वृद्धि को प्राप्त होती हुई कहां तक जाना, केवल ज्ञान से एक हीन अंक पर्यंत, यानी वहां तक विषम धारा होती है। सर्वधारा में असंख्यात और अनंत के जो जो जघन्य स्थान है उनमें एक एक अंक जोड़ने से इस धारा के जघन्य स्थान बन जाते हैं। क्या कहना चाहते हैं, असंख्यात में विषम धारा कब से शुरू होती है, तो जघन्य जो असंख्यात है जिसको जघन्य परिता संख्यात कहते हैं, वो सम संख्या है, उसमें एक मिला दो तो असंख्यातों में वो विषम धारा का पहला स्थान होगा। ऐसे अनंतों में सबसे जघन्य अनंत है जघन्य परितानंत, उसमें एक मिला दो तो वो हो जाएगी अनंतों में विषम धारा का पहला स्थान। 51 पेज नंबर 51 पेज पर ये बात चल रही है विषम धारा की, और हम गाथार्थ पढ़ रहे थे, फिर से दोबारा पढ़ेंगे। एक अंक से प्राप्त कर दो दो की वृद्धि को प्राप्त होती हुई केवल ज्ञान से एक अंकहीन पर्यंत विषम धारा होती है, यानी एक तीन पांच सात आदि, और अंत में केवल ज्ञान माइनस वन। अभी जो असंख्यात के जो अलग अलग स्थान है, सभी असंख्यात संख्याओं को लेते हैं तो उसमें विषम धारा का स्थान प्रथम स्थान कौन सा है, तो जघन्य असंख्यात में एक मिला दो। असंख्यातों में जघन्य संख्या कौन सी है, जघन्य परिता संख्यात, उसमें एक मिला दो तो विषम धारा का पहला स्थान असंख्यात के लिए। अनंत राशि जघन्य परितानंत से शुरू होती है तो उसमें एक मिला दो तो हो जाएगा अनंतों का विषम धारा का पहला स्थान। यही कह रहे हैं कि सर्वधारा में गाथा का सेकंड लाइन गाथा से की असंख्यात और अनंत के जो जघन्य स्थान है, कौन से जघन्य स्थान है, जघन्य परिता संख्यात और जघन्य परितानंत, उनमें एक अंक जोड़ने से इस धारा के जघन्य स्थान बन जाते हैं, तथा सर्वधारा में संख्यात असंख्यात परितानंत एवं युक्तानंत के जो उत्कृष्ट स्थान है वही विषम धारा के उत्कृष्ट स्थान है। देखो क्या कहना चाहते हैं, जघन्य परिता संख्यात ये सम संख्या है, उसमें से एक कम कर दो तो क्या मिलेगा, उत्कृष्ट संख्यात, तो उत्कृष्ट संख्यात ये विषम स्थान है। यही कह रहे कि संख्यात असंख्यात के जो उत्कृष्ट स्थान है, कि सर्वधारा में जो संख्यात का उत्कृष्ट स्थान कौन सा है, तो उत्कृष्ट संख्यात, वो विषम संख्या है, इतनी कहने की बात। असंख्यात के जो उत्कृष्ट स्थान है, असंख्यात का उत्कृष्ट स्थान कौन सा है, असंख्यात असंख्यात, तो जघन्य परिता संख्यात में से एक कम कर दो तो उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात होगा, वो भी विषम स्थान है। तीनों नहीं ले सकते हैं, नहीं तीनों ले सकते वैसे एक्चुअली, क्योंकि आवली में भी वो सम संख्या होगी ना, उन्होंने उसके भेद नहीं किए हैं, यहाँ पर केवल यहाँ परितानंत और युक्तानंत को लिया, अनंतानंत को नहीं लिया, क्योंकि वो केवल ज्ञान की वो तो सम संख्या हो जाती है। तो परितानंत भी और युक्तानंत के भी जो उत्कृष्ट स्थान है, जघन्य परितानंत तो हमने सम संख्या देखी थी, परंतु परितानंत का जो उत्कृष्ट स्थान है, युक्तानंत का जो उत्कृष्ट स्थान है, युक्तानंत का उत्कृष्ट स्थान क्या होगा, अनंतानंत जघन्य अनंतानंत से एक कम, युक्तानंत। तो हमने क्या देखा था, जघन्य युक्तानंत इंटू जघन्य युक्तानंत, वो वर्ग स्थान है तो वो सम संख्या हो जाएगी, और उसमें से एक कम कर दो तो युक्तानंत का उत्कृष्ट स्थान है, वो और संख्या हो जाएगी। ख्याल में तीन बार आप कौन सी बात पढ़ रही
है?
देखो आप समधारा के साथ कंपेयर कर रही है। देखिए समधारा में ले लो, समधारा का गाथार्थ पहले दे दो। सर्वत्र संख्यात आदि का जो जघन्य स्थान है वही समधारा का जघन्य स्थान है। संख्यात का जघन्य स्थान है दो, वो समधारा का जघन्य स्थान है। असंख्यातों में जघन्य स्थान कौन सा है? जघन्य परिता संख्यात, वो समधारा का स्थान है, सम संख्या है। सुनो ना, अभी यहाँ जो लिखा है अभी उसको पहले समझ लो। अभी संख्यात आदि का जो हो गए थे ना, संख्यात आदि का यानी संख्यात का असंख्यात का जो उत्कृष्ट स्थान है उसमें से एक कम करने पर समधारा का उत्कृष्ट स्थान बन जाता है। यानी वो संख्यात और असंख्यात दो को ही ले लेना वहां पर, क्योंकि अनंत का उत्कृष्ट स्थान तो केवल ज्ञान है। उसको तो समधारा में लेना है, उसको विषम धारा अनंत केवल ज्ञान जो है अंतिम स्थान जो है अनंत का वो तो समधारा में आता है। एक कम करने कर देने पर बताया ना यहाँ पर
वो आगे
देखो हम विशेषार्थ पढ़ेंगे समधारा का, फिर आपको घोटाला नहीं होगा। इस समधारा में संख्यात व असंख्यात के जघन्य स्थान तो प्राप्त होते हैं, इन्हें दो संख्या भी आती है और जघन्य परिता संख्या भी आती है, किंतु उत्कृष्ट स्थान प्राप्त नहीं होते। जैसे मान लीजिए जघन्य संख्यात दो और जघन्य असंख्यात 16 है तथा उत्कृष्ट संख्यात 15 है और उत्कृष्ट असंख्यात 255 है। ये 255 क्यों? क्योंकि जघन्य अनंत से एक कम कर दिया हमने, 256 से एक कम कर दिया। ऐसी संख्या मान ली है कि जो सम है इसलिए उन्होंने एक माइनस करके बता दिया। दोनों के जघन्य स्थान सम होने से समधारा में प्राप्त हो जाते हैं, किंतु दोनों के उत्कृष्ट स्थान विषम होने से इस धारा में प्राप्त नहीं होते। ये संख्यात और असंख्यात के लिए यहाँ घटित हुआ। जघन्य स्थान सम है, उत्कृष्ट स्थान विषम है, यही बात यहाँ फिर बता रहे हैं।
यहाँ पे जो असंख्यात का जघन्य स्थान बताया है ना विषम धारा में, यहाँ पे नहीं बताया ना, इसके लिए
कहाँ बताया?
नहीं, संख्यात आदि का जो जघन्य
उसमें एक जोड़ने पर विषम धारा की बात पर फिर पढ़ो गाथार्थ। आप सम में देख रहे हैं, विषम देखो, विषम धारा कहाँ लिखी है आपकी? हाँ तो क्या लिखा है? सर्वधारा में असंख्यात और अनंत के जो जघन्य स्थान है उनमें एक अंक जोड़ने पर, हाँ एक पढ़ाने वही तो मैंने, इसलिए वो घोटाला हुआ है ना, इस धारा के जघन्य स्थान बन जाते हैं। तथा आगे लिखा ना, सर्वधारा में संख्यात असंख्यात परितानंत एवं युक्तानंत के जो उत्कृष्ट स्थान है वही विषम धारा के उत्कृष्ट स्थान है। वो तो डायरेक्ट ही आते हैं ना, वहां तो हमने वो उसमें नहीं आते ऐसा बताया था, यहाँ तो उसमें आते हैं ऐसा बताया। विशेषात एक अंक से प्रारंभ कर दो दो की वृद्धि को लिए हुए केवल ज्ञान से एक अंकहीन पर्यंत विषम धारा होती है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 वगैरह वगैरह। अभी हमने केवल ज्ञान के लिए क्या संख्या निश्चित की थी, मान ली थी 65,536, तो उसमें एक कम कर दो 535, वो हो जाएगा विषम धारा का उत्कृष्ट स्थान। और उसके पहले 65533, उसके पहले 65531 है ना, तो ये तीन संख्या यहाँ लिखी है 65531, 65533 और 65535। तो ये हमने जिसको केवल ज्ञान माना था उसमें एक एक कम कर दिया। केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेदों का प्रमाण सम संख्या स्वरूप है। केवल ज्ञान कहने से उसमें अविभाग प्रतिच्छेद लेना, अतः विषम धारा का अंतस्थान केवल ज्ञान से एक अंक हीन होता है। तो 65,535 हमने जो मान ली संख्या उसके अपेक्षा से सर्वधारा में असंख्यात का जघन्य स्थान 16, ये हमारे मानी हुई फिगर से सब, तथा अनंत का जघन्य स्थान 256 था। इन दोनों में एक अंक मिलाने से यानी उसको 17 किया और इसको 257, विषम धारा में दोनों के जघन्य स्थान बनते हैं, यानी असंख्यात संख्या के लिए ये उसका जघन्य स्थान हुआ और वो अनंत 217 और अनंत के लिए 257 विषम धारा का प्रथम स्थान हुआ। तथा अंक संदृष्टि की अपेक्षा सर्वधारा में संख्यात असंख्यात के जो 15 और 255 के उत्कृष्ट स्थान थे वही यहाँ विषम धारा में हैं। अर्थात इस विषम धारा में उत्कृष्ट संख्यात और उत्कृष्ट असंख्यात तो प्राप्त होते हैं किंतु जघन्य नहीं, क्योंकि जघन्य स्थान तो सम है, उत्कृष्ट स्थान विषम है। अब 57 नंबर की जो गाथा है उसके ऊपर लिखा है,
257 दिया ना इन दोनों में एक एक अंक मिलाने से,
उसमें नहीं मिलाना, 16 में एक मिला तो 17 हुआ, हाँ 256 में एक मिला, 256 से अनंत शुरू होते हैं तो वो सम संख्या है, तो जघन्य अनंत में एक मिला दो तो 257 हुए, तो अनंतों के लिए भी विषम धारा का प्रथम स्थान है अनंतों के लिए। इन्होंने डायरेक्ट एक से लेकर केवल ज्ञान तक की बात नहीं की, बीच बीच में असंख्यात के और अनंतों के भी बात की, उसके लिए विषम कौन सी संख्या है सम कौन सी उसको यहाँ अधिक करके बताया है। जघन्य परिता संख्या यानी जघन्य असंख्यात के लिए उन्होंने 16 नियुक्त किए, संख्या मान ली है तो वो तो सम संख्या है, उसमें एक कम कर दो तो उत्कृष्ट संख्यात आती है वो तो विषम है, पर असंख्यात के लिए विषम वाली पहली संख्या कौन सी होगी? हाँ 17।
ये जो आखिर में लिखा है ना,
हाँ
जो पढ़ा था अर्थात,
हाँ
हाँ विषम धारा में उत्कृष्ट संख्या और उत्कृष्ट संख्या को प्राप्त होते हैं
यानी जघन्य असंख्यात है वो विषम नहीं है, जघन्य संख्यात है वो दो की संख्या है वो सम संख्या है इसलिए जघन्य नहीं, पर उत्कृष्ट संख्यात है विषम संख्या है तो विषम धारा में प्राप्त होती है, परंतु जघन्य संख्या उसका जघन्य स्थान संख्यात में से जो जघन्य स्थान है वो विषम धारा में प्राप्त नहीं है, यानी संख्यात में कौन सी संख्या है कौन सा अंक है जो विषम धारा का प्रथम स्थान होगा? संख्यात के लिए 3 होगा, संख्यात के लिए सभी पूरे समधारा की अपेक्षा बात करेंगे तो 1 कहेंगे, और संख्यात संख्या में कौन सा विषम स्थान है तो संख्यात वाली जो जघन्य है 2 उसमें 1 मिला दो, ख्याल में आई इसका अर्थ ख्याल में है क्या? फिर दोबारा बताओ।
देखो यहाँ मेरा दूसरा प्रश्न ये है, विशेषार्थ लिखा है इसमें एक के अंक से प्रारंभ कर,
हाँ
तो यहाँ एक का उन्होंने जघन्य बताया,
हाँ सर्वधारा में एक है वो जघन्य स्थान है, परंतु यदि हम संख्यात को लेते हैं संख्यात संख्याएं 2 से शुरू होती है
वो 3 से,
और इसमें संख्यातों के लिए विषम धारा का प्रथम स्थान 3 होगा, ख्याल में आई बात? अब आगे पढ़ते हैं 57 गाथा का हेडिंग, अथ सम विषम धारयो हो स्थानम तद गच्छ आनयनम च आह, यानी सम और विषम दो धाराओं में कितने स्थान होते हैं तद गच्छ यानी उनका प्रमाण, आनयन यानी लाते हैं उसके लिए बताएंगे। केवल नान सद्धम ठाणम सम विषम धारयाण हवे आदियन्ते शुद्धे वड्डिहिदे इगिजुदे ठाण केवलज्ञानस्यार्धं स्थानं समविषमधारयोर्भवेत्। आदौ अन्ते शुद्धे वृद्धिहते एकयुते स्थानानि। 52 नंबर के पृष्ठ पर आते अभी हम। सम विषम धारा के स्थानों का प्रमाण और उन्हें प्राप्त करने की विधि। सम और विषम दोनों धाराओं के स्थान केवल ज्ञान के अर्ध प्रमाण यानी केवल ज्ञान से आधे होते हैं। देखो हमने वो तो पनटी की बात छोड़ो, हमने 100 तक अगर मान लेते अंक, 1 से 100 तक 100 अंक हो गए, उसमें से सम संख्या कितनी होगी? 50 और विषम संख्या 50, तो 100 के आधे हुए ना। ऐसे ही 1 से लेकर 100 केवल ज्ञान तक के जितने सर्वधारा के स्थान है उसको स्थान कहेंगे। 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, इसको एक एक को एक एक स्थान कहेंगे। तो ऐसे कितने स्थान है? तो केवल ज्ञान के अविभाग को पीछे जितने उतने स्थान है, उसमें सम संख्या कितनी है? तो केवल ज्ञान डिवाइडेड बाय 2 यानी उसके आधे, उतने ही विषम स्थान है। देव गाथार्थ हम पढ़ेंगे। सम और विषम दोनों धाराओं के स्थान केवल ज्ञान के अर्ध प्रमाण यानी केवल ज्ञान से आधे होते हैं, क्योंकि आदि और अंत स्थान को शुद्ध करके, शुद्ध करने का अर्थ अधिक प्रमाण में से हीन प्रमाण को घटाकर, नहीं समझे, वृद्धि चय का भाग देने पर जो लब्ध आवे उसमें एक अंक मिलाने से स्थानों का प्रमाण प्राप्त हो जाता है। देखो शुद्ध करना है ने अंत में से आधी को घटाना, 100 में से हमने 1 घटा दिया, 99 आ गए। वृद्धि चय का भाग देने पर, वृद्धि कितने कितने से होती है? दो से होती है ना। अब यहाँ सम की बात हो या विषम की हो, सम संख्या 50 है, विषम संख्या भी 50 है, तो पहले में पहले वृद्धि चय जो है, आदि स्थान जो है, समधारा का अंतिम स्थान कौन सा है? 100, और समधारा का पहला स्थान कौन सा है? 2। पहला स्थान 2 है, तो उसमें से वो माइनस कर देना, 100 महीने से 98 हो गए, उसको डिवाइडेड बाय 2, 49 प्लस 1, देखो इसका अर्थ देखते हैं। यहाँ इनकी भाषा में पढ़ेंगे, अधिक प्रमाण में से हीन प्रमाण को घटाकर, आदि और अंत है ना, उस धाराओं का आदि और अंत है, तो आदि और अंत स्थान को शुद्ध करके वृद्धि चय का भाग देने पर, वृद्धि हमारी दो दो से वृद्धि है, चय यानी फिक्स डिफरेंस जो है उसको चय कहेंगे। ये 2 में 2 मिलाने पर 4 होते, फिर 2 मिलाने पर 6 होते, उसको जो एक एक अधिक वृद्धि होती गई ना, वो वृद्धि चय का प्रमाण है 2। तो चय का भाग देने पर जो लब्ध आवे उसमें एक अंक मिलाने से स्थानों का प्रमाण प्राप्त हो जाता है। हमने हमारे समधारा का अंतिम स्थान है 100, हमने जो मान लिया यहाँ का नहीं, और पहला स्थान है 2, 100 में से 2 घटा हो तो 98 आ गए। वृद्धि हमारी 2-2 से होती है, उसे 2 से भाग दे दो, 49, और उसमें 1 मिला दो। देखो विशेषांक, आदि अंते शुद्धे वड्डी हृदय इगि जुदे ठाणा। इस करण सूत्रानुसार आदि और अंत स्थान को शुद्ध करने अर्थात आदि और अंत के प्रमाण में से जो अधिक हो उसमें से हीन प्रमाण घटाना चाहिए। जो बड़ी संख्या उसको हम घटाएंगे, सॉरी बड़ी में से छोटी घटाएंगे। प्रत्येक स्थान पर 2 की वृद्धि हुई है, अतः 2 का भाग देकर जो लब्ध आवे उसमें 1 जोड़ देने से स्थानों की प्राप्ति हो जाएगी, यानी नंबर ऑफ स्थान कितने हैं उसकी प्राप्ति हो जाएगी। जैसे स समधारा का अंत स्थान 65536 है और आदि स्थान दो है। प्रत्येक स्थान पर वृद्धि चय दो है, अतः 65536 में से दो घटाए तो 65534 आ गए। उसको दो से भाग दिया तो 32767 आ गए। उसमें एक प्लस कर दो 32768। ये केवल ज्ञान के अर्ध प्रमाण समधारा के स्थान है। इसी प्रकार विषम धारा का अंत स्थान 65535 है, क्योंकि उसमें से एक कम कर दो, और आदि स्थान एक है, वृद्धि चय दो है, अतः 65536 में से एक घटाया 65534 आ गए। उसको दो से भाग दिया 32767 आए। उसमें एक मिलाया तो 32768। ये विषम धारा के केवल ज्ञान के अर्ध प्रमाण स्थान है। हमने डायरेक्ट उसको दो से भाग दिया था। अब यहाँ क्योंकि यहाँ वृद्धि तो दो दो से है, इसलिए ये तो हमें आसान है आधा लाना, परंतु कहीं अन्य अन्य वृद्धि होगी तो ये फॉर्मूला सब जगह लागू होगा। अधिक से अधिक कितने कितने से वृद्धि होते हुए स्थान गिनना है तो उसमें भी ये फॉर्मूला लागू हो सकता है। अब आगे जो कृति धारा है, चार नंबर पे है ना, पहले कौन से देखे हमने, समधारा, फिर सॉरी पहले सर्वधारा, फिर समधारा, फिर विषमधारा, अभी कृति धारा है ना। इसमें केवल मात्र वर्ग स्थान को लिया जाएगा, यानी जितने के वर्ग होते उसने उसके स्थान हो गए, एक का वर्ग, दो का वर्ग, तीन का वर्ग, चार का वर्ग, उस वर्गों वर्गों को रखेंगे। देखो कृति धारा का स्वरूप हम यहाँ देखेंगे 58 नंबर पर। इगिचादि केवलंतम कदि पदम तप पदम कदि अवरम, इगिहीन तप पद कदि हेठिम मुक्कस सौवत्थ, एकम चत्वार्यादि केवलांता कृति पदम तत्पदम कृति अवरम, एक ही न तत्पद कृति अधस्तनम उत्कृष्टम सर्वत्र। एक चार आदि केवल ज्ञान पर्यंत कृति धारा होती है। एक चार के बाद किसको लेंगे नितिन भाई? हाँ 16, आप क्या कहते हैं?
9,
तीन का वर्ग 9, नहीं 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 अभी कृति धारा, ये द्विरूप वर्ग धारा नहीं ले रहे। एक का वर्ग कितना? 1 × 1 एक, दो का वर्ग 4, तीन का वर्ग
9,
अरे सभी क्यों, हर एक का वर्ग, जितने का वर्ग होगा वो सब लेंगे, सभी के वर्ग। हाँ हाँ, चार का वर्ग 16, पांच का 25, छह का 36, सात का 49, सब का तो कितने कितने का आएगा? कहाँ तक रुकेंगे लास्ट स्थान?
केवल ज्ञान के वर्गमूल तक,
केवल ज्ञान के वर्गमूल तक ही रुकना पड़ेगा। उसके आगे वाले स्थान का वर्ग करने जाए तो केवल ज्ञान से बढ़कर हो जाएगा। जैसे हमारे पास 1 से 100 तक संख्या है तो कृति धारा में क्या क्या लेंगे बोलो? कृति धारा ने वर्ग आप बताएंगे हमने, एक चार वर्ग को केवल चुनना है हमको। एक को लिया, दो के वर्ग को लेना है, दो को नहीं लेना, चार को लिया, तीन के वर्ग 9 को लिया, हाँ
हाँ
हाँ 9 × 9 = 81 और 10 × 10 हाँ। तो अंतिम स्थान तो केवल ज्ञान का है, कृति धारा में केवल ज्ञान को लेना है, पर किसके किसके वर्गों को किए हमने, वर्गमूल का वर्ग करेंगे ना, किसका वो कृति मातृक धारा कहलाएगी, किसका वर्ग होता है उसको कृति मातृक कहते हैं, परंतु हमने किसके वर्ग को किया, हमने एक के वर्ग को लिया, दो के लिया, तीन के लिया, चार के लिया, कहाँ तक के वर्गों को लेना है, ऐसा मैंने पूछा था।
दस को लेना पड़ेगा
किसमें? नहीं, कृति मातृक में लेंगे वो।
नहीं,
दस का लेना पड़ेगा,
दस का वर्ग लेना पड़ेगा।
वही तो, वर्ग की बात तुम
स्थान कितने होते हैं तो दस हो गए, यानी इसमें स्थान कितने हो गए तो केवल ज्ञान के वर्गमूल प्रमाण स्थान हो गए। चल में आई ना बात? जैसे
अभी आपने जो 9 × 9 = 81 बताया,
हाँ,
वैसे 10 × 10
बताया ना, वो केवल वो अंतिम स्थान है, यानी वो जो 100 इटसेल्फ अंतिम स्थान है, परंतु नंबर ऑफ स्थान कितने हुए? तो 10 हुए, तो वो केवल ज्ञान के वर्गमूल प्रमाण इसमें स्थान हो गए। और पहला स्थान कौन सा? एक है, और अंतिम स्थान कौन सा है? तो केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान है इटसेल्फ। कृति मात्र कभी आनी बात है, देखो पढ़ेंगे। आपको घोटाला हमने पहले बताया ना, तो देखो, एक आदि चार, एक चार आदि केवल ज्ञान पर्यंत कृति धारा होती है। केवल ज्ञान के प्रथम वर्गमूल पर्यंत जो वर्गमूल है उनका वर्ग करने से, यहाँ केवल वर्ग वर्गों को लेना है, वर्गमूलों को नहीं लेना है, पर किसका वर्ग करेंगे, कहाँ तक की संख्याओं के वर्गों को लेंगे? हाँ, केवल ज्ञान के प्रथम वर्गमूल का वर्ग क्या है? केवल ज्ञान, तो केवल ज्ञान उसकी अंतिम संख्या है, ये कहना चाहते। फिर से देखो, एक चार आदि, आदि में एक चार, फिर तीन का वर्ग 9 होगा, चार का वर्ग 16 होगा, पांच का 25 होगा, छह का 36 होगा, सात का 49 होगा, आठ का 64 होगा, 9 का 81 होगा, 10 का 100 होगा, इस तरह से आगे बढ़ना है। 11 का 11 का मालूम नहीं, 21 होगा, 144 होगा, इस तरह से जाना है आगे। तो इसको कहेंगे कृति धारा, कृति यानी वर्ग, वर्गों की धारा। वो जो हम द्विरूप वर्ग धारा कहते वो बात अलग है, वो 2 के वर्ग से शुरू हुई थी, और यहाँ मात्र वर्ग 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 लेना। किसका वर्ग? तो क्रम से जो जो संख्या आएंगी उसके वर्गों को लेना है। केवल ज्ञान के प्रथम वर्गमूल पर्यंत जो वर्गमूल है उनका वर्ग करने से जो राशियां उत्पन्न होती है वे ही इस धारा के स्थान है। सर्वत्र जघन्य स्थान तो कृति रूप ही है। सर्वत्र जघन स्थान तो कृति रूप ही है ने, अभी जो एक जो संख्या है वो कृति रूप ही है। अब असंख्यात का जघन्य स्थान कौन सा है? जघन्य परिता संख्यात, वो भी कृति रूप वर्ग रूप ही स्थान है, ये कहना चाहते हैं। अनंतों का जो जघन है वो भी कृति रूप स्थान ही है।
अच्छा,
जघन्य स्थान के वर्गमूल में से एक घटाकर उसकी कृति करने पर अपने से अधस्तन का उत्कृष्ट भेद प्राप्त हो जाता है। अभी वो संख्या लेकर समझाएंगे तो ये और ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। कृति नाम वर्ग का है, अतः जो संख्या वर्ग से उत्पन्न है, अर्थात किसी भी संख्या का परस्पर में गुणा करने से उत्पन्न होती है, वह कृति धारा की संख्या है। जैसे 1 × 1 = 1 होता है, 2 × 2 = 4 होता है, 3 × 3 = 9 होता है, 4 × 4 = 16 होता है, फिर आगे 25, ये 26 नहीं है, 36 चाहिए। आपके उसमें क्या लिखा है? 36 करो। देखो अंतिम स्थान कैसा है, 256 का वर्ग है। अभी बीच वाली संख्या छोड़ दो, हम वापस आएंगे उल्टा करके। 65536 है ना, तो वो 256 का वर्ग है। उसके पूर्व वाला वर्ग स्थान कौन सा होगा? 255 का वर्ग। तो ये उसके पहले लिखा, देखो 65,025 जो है वो 255 का वर्ग है, उसके पूर्व का क्या होगा 254 का वर्ग, तो 64,516 क्या कहते आप, हाँ 253 का वर्ग, 252 का वर्ग, इस तरह से पीछे पीछे जा सकते हैं। ये समझाने के लिए उन्होंने ये संख्या लेकर समझाई, जैसे हमारे 100 तक के जो उदाहरण था, 100 है वो 10 का वर्ग था, तो उसके पूर्व का स्थान कौन सा होगा, 10 में से एक घटा दो 9 होगा, 9 का वर्ग करो 81 उसका पूर्व का स्थान होगा, उसमें से और एक घटा 8 हुए, 8 का वर्ग 64 उसके पूर्व का स्थान होगा, इस तरह से सोचना है इसको। ये हो गया, अर्थात एक से प्रारंभ कर एक एक की वृद्धि करते हुए मिला 53 पेज पर आए, केवल ज्ञान के प्रथम वर्गमूल तक के समस्त वर्ग स्थान, वर्गमूल तक के नहीं, वर्गमूल के वर्ग तक के, एक एक, एक मिनट, अर्थात एक से प्रारंभ कर, अच्छा एक एक की वृद्धि करते हैं, कितने स्थान है उनकी संख्या बता रहे, केवल ज्ञान के प्रथम वर्गमूल तक के समस्त वर्ग स्थान इस धारा के स्थान है, ये वाक्य अटपटा है, कैसे बराबर है,
देखो एक से चालू हो गया, केवल ज्ञान का प्रथम वर्गमूल उन्होंने यहाँ 256 बताया, तब के समस्त वर्गस्थान इस धारा के स्थान,
वर्गस्थान क्या है वो सब, दो संख्या वर्गस्थान कहाँ है, तीन स्थान वर्गस्थान कहाँ है, चार संख्या वर्गस्थान कहाँ है,
वर्गस्थान यानी आपको कहना है चार नौ
इस धारा के स्थान है बताया, कृति धारा के स्थान को तत्पद कहते हैं और वह पद केवल ज्ञान के प्रथम वर्गमूल की संख्या प्रमाण है, ये बराबर है दूसरा वाक्य कि कृति धारा के स्थान को तत्पद कहते हैं, उसके स्थान कितने हैं, उसके पद कितने हैं, केवल ज्ञान के प्रथम वर्गमूल की संख्या प्रमाण है, ये बराबर है, एक एक की वृद्धि करते हुए केवल ज्ञान के प्रथम वर्गमूल तक के समस्त स्थान इस धारा के स्थान है, फिर भी इस धारा के स्थान नहीं कह सकते, केवल ज्ञान इस धारा का अंतिम स्थान है,
प्रथम वर्गमूल लिखा ना उन्होंने,
ये भाषा की पहली लाइन का कुछ है, केवल ज्ञान के प्रथम वर्गमूल,
देखो गाथा पढ़ेंगे, इगी चादि केवल अंतम, एक चार आदि केवल ज्ञान तक, कदी पदम यानी वर्ग स्थान वर्ग पद, तब पदम कदी अवरम, तत्पदम कृति ही अवरम, विरुद्ध ने तत्पदम कृति ही अवरम, एक हीन तत्पद कृति ही अदस्तनम उत्कृष्टम सर्वत्र, संस्कृत का वाक्य पढ़ेंगे, एकम चत्वारी आदि केवल ज्ञानांता कृति धारा स्यात, उसको कृति धारा कहते हैं, पदम कृति धारा स्थानम, तत्पदम यानी पद यानी कृति धारा के स्थान कितने हैं, उसको पद कहा, केवल ज्ञानस्य प्रथम मूल मात्रम, वो कृति धारा के स्थान कितने हैं, तो केवल ज्ञान के प्रथम वर्ग की संख्या प्रमाण है, ये यहाँ का 53 नंबर पेज का सेकंड लाइन में बराबर है, ये उसका ट्रांसलेशन बराबर है, आगे देखते हैं, संख्यातादीनां जघन्यं कृत्यात्मकम् एव, यानी कृत्यात्मकम् एव, एकहीनस्य असंख्यातादीनां प्रथममूलस्य कृति एव, यानी जो जघन्य स्थान है वो कृत्यात्मक ही है, जघन्य स्थान कृति रूपी है, वो गाथार्थ के चौथी लाइन में बताया, जघन्य स्थान कृति रूपी है। अब कहते हैं एकहीनस्य असंख्यातादीनां प्रथममूलस्य कृतिरेव, जघन्य स्थान के वर्गमूल में से एक घटाकर उसकी कृति करने पर अपने से अधस्तन का उत्कृष्ट भेद प्राप्त हो जाता है। देखो एकहीनस्य असंख्यातादीनां प्रथममूलस्य कृतिरेव सर्वत्र अधस्तन अधस्तन उत्कृष्टं प्रमाणं भवति। अंक संदृष्टो 149 के केवल ज्ञान, कहने केवल ज्ञान 149 केवल ज्ञान को 16 लिखा उन्होंने। ये यहाँ जो लिखा ना अर्थात विशेषार्थ की अंतिम लाइन, उन्होंने क्या बताया कि जैसे एक है दो है चार है नौ है वगैरह वगैरह, अर्थात एक से प्रारंभ कर एक एक की वृद्धि करते हुए, ये वाक्य जरा मुझे एक ये देना जीवकण। कृति धारा जिसमें वर्ग रूप संख्या विशेष पाए जाते हैं वह कृति धारा है। इसका प्रथम स्थान एक है क्योंकि एक का वर्ग एक ही है, दूसरा स्थान चार क्योंकि दो का वर्ग चार, तीसरा स्थान नौ क्योंकि तीन का वर्ग नौ, चौथा स्थान सोलह क्योंकि चार का वर्ग सोलह, इसी तरह पांच आदि के वर्ग 25 से लेकर इसके स्थान केवल ज्ञान तक जानने, यानी स्थान है वो केवल ज्ञान तक जानने, केवल उसमें से वर्ग वर्गों को ले लेंगे, इसके सर्व स्थान कितने ऐसा पूछेंगे तो केवल ज्ञान के वर्गमूल प्रमाण, यानी ये जो सेकंड लाइन है वो तो बराबर है उनकी 53 पेज पर जो सेकंड लाइन है कि कृतिधारा के स्थानों को तत्पद कहते हैं और वे कितने हैं केवल ज्ञान के प्रथम वर्गमूल की संख्या प्रमाण है, ये वाक्य बराबर है। उसके पहले जो लिखा है अर्थात कह के, अर्थात एक से प्रारंभ कर एक एक की वृद्धि करते हुए केवल ज्ञान के प्रथम वर्गमूल तक के समस्त वर्ग स्थान इस धारा के स्थान है, ये बात गलत है।
एक एक की वृद्धि नहीं होगी,
समस्त वर्ग स्थान बताया है वहां, ऐसा ही लिखना था कि केवल ज्ञान तक के सभी वर्ग स्थान
एक से प्रारंभ कर,
क्यों ऐसे लिख सकते, एक से प्रारंभ कर एक एक की वृद्धि करते हुए केवल ज्ञान के प्रथम वर्ग मूल तक के, अच्छा मूल प्रथम वर्ग मूल के वर्ग तक के समस्त वर्ग स्थान, ऐसा लिखो प्रथम वर्ग मूल तक के वर्ग, अच्छा उनको ऐसा कहना है यानी एक है एक एक में वृद्धि ने दो तीन चार प्रथम वर्गमूल तक के वर्ग करना, वो समस्त वर्ग स्थान इस धारा में होते हैं। यहाँ घोटाला ने केवल ज्ञान के प्रथम वर्गमूल तक के समस्त वर्ग स्थान ऐसा हो जाता है, इसमें से दो अर्थ निकलते हैं, अंतिम स्थान वो केवल ज्ञान का प्रथम वर्गमूल हुआ, वो वर्गमूल का वर्ग जो केवल ज्ञान है उसको लेना है। एक शब्द है एक एक की वृद्धि करते हुए केवल ज्ञान के प्रथम वर्ग मूल के वर्ग तक के वर्ग तक के समस्त वर्ग स्थान, के वर्ग डाला
तक निकाल दे बीच में,
नहीं नहीं रखे दो
केवल ज्ञान।
देखो एक से प्रारंभ कर एक एक की वृद्धि करते हुए केवल ज्ञान के प्रथम वर्गमूल के वर्ग तक के समस्त वर्ग स्थान इस धारा के स्थान है।
वर्गमूल के बाद के डालना
नहीं, के वर्ग, वर्गमूल का वर्ग यानी केवल ज्ञान,
प्रथम वर्ग
मूल के वर्ग ब्रैकेट में लिखो केवल ज्ञान। आगे बढ़ रहे प्रथम वर्गमूल का वर्ग ऐसा लेना है, प्रथम वर्गमूल के वर्ग यानी क्या केवल ज्ञान के समस्त वर्ग स्थान इस धारा के स्थान है। अभी ये बराबर लगता है इस धारा में। नेक्स्ट लाइन जघन्य स्थान तो वर्ग रूप ही है इस धारा में, इस धारा का स्थान लेना है वो संख्यात का स्थान नहीं लेना, कृति धारा का जघन्य स्थान एक है वो कैसा है वर्गात्मक यानी कृत्यात्मक का यानी वर्ग रूपी है। तो इस धारा में जघन्य संख्यात संख्यात कौन लिखा, इस धारा में जघन्य क्या लिखा वो मैं अभी पढ़ा नहीं आगे। इस धारा में जघन्य जघन्य स्थान चाहिए ना। देखो तो वर्ग रूप ही है जघन्य संख्यात कैसा लिखा उसको फिर वो नहीं है संख्यात संख्याएं दो से शुरुआत होते हैं जघन्य संख्या लिखो केवल तो क्यों लगाया आगे जघन्य स्थान मूल में जघन्य स्थान लिखा था। देखो गाथात की तीसरी लाइन में क्या लिखा है सर्वत्र जघन्य स्थान तो कृति रूप ही है वैसे इस धारा में जघन्य स्थान लिखो अभी तो पेंसिल से इस धारा में जघन्य स्थान जो एक है वो तो वर्ग रूपी है जघन्य असंख्यात का वर्गमूल निकालकर उसमें से एक घटाना जो अवशेष बचे उसकी कृति करना जो प्रमाण प्राप्त हो वह असंख्यात के अधस्तनवर्ती यानी संख्यात का कृति धारा में उत्कृष्ट भेद है। देखो क्या कहना चाहते हैं हमें संख्यात जो संख्या है कहां से कहां तक है संख्यात जघन्य संख्या दो से लेकर उत्कृष्ट संख्यात जो है जघन्य परिता संख्यात में से एक कम है जघन्य परिता संख्यात वर्ग रूप स्थान है उसके पूर्व वाला वर्ग कौन सा होगा जैसे हमने देखा था सौ हमारा वर्ग रूप स्थान है सौ के पूर्व वाला वर्ग कौन सा होगा हाँ तो उसमें क्या करना है हमको सौ का वर्गमूल निकालना दस दस में से एक कम कर दो नौ नौ का वर्ग करो इक्यासी ऐसे ही हमको जघन्य परिता संख्या जो है यह वर्ग रूप संख्या है यहाँ पता ना सर्वत्र जघन्य स्थान है वो वर्ग रूप होता है कृति रूप होता है तो जघन्य परिता संख्या ये वर्ग है किसका वर्ग है उसके वर्गमूल का वर्ग है तो जघन्य परिता संख्या का जो वर्गमूल है उसमें से एक कम कर दो और फिर उसका वर्ग करो वो संख्यात का उत्कृष्ट वर्ग स्थान होगा। हाँ उत्कृष्ट संख्यात नहीं उसके वर्गमूल से वो एक कम करना है। हमने मान लिया है जघन्य संख्यात है वो 16 मान लिया 16 किसका वर्ग है चार का उसमें से एक माइनस करो, तीन आए, वो उससे 16 में से मत माइनस करो, चार में से माइनस करो, तीन आया, और तीन का वर्ग क्या होगा? नौ। तो 16 यदि हम जघन्य परिता संख्यात मानते हैं, जो वर्गस्थान है, तो उसके पूर्व वाले 1 से 15 तक के सभी संख्यात कहलाएंगे, तो संख्यात संख्याओं में उत्कृष्ट वर्गस्थान कौन सा होगा? तो 9 होगा। ये ख्याल में आती बात? यही बता रहे, देखो यानी यहाँ उन्होंने ये बात बोली कि सभी जो जघन्य स्थान है वो तो वर्ग रूप है। अभी हमको असंख्यात का जघन्य स्थान वर्ग रूप है, असंख्यात में से जघन्य स्थान कौन सा है? तो जघन्य परिता संख्यात। उसके पूर्व का वर्ग स्थान कौन सा होगा? जो संख्यात है उनमें से जो उत्कृष्ट वर्ग स्थान होगा वो कैसे निकालना? तो जघन्य परिता संख्यात का वर्गमूल लेना। तो मेरा प्रश्न है, जघन्य परिता संख्यात का वर्गमूल असंख्यात होगा कि संख्यात होगा? जघन्य परिता संख्यात का वर्गमूल संख्यात होगा कि असंख्यात है? संख्यात, क्योंकि जघन्य में जघन्य है ना, उसमें से एक भी कम करो तो संख्यात आती है, उसके तो वर्गमूल ले ले, तो वो तो संख्यात है, कोई विशिष्ट संख्यात संख्या है, उसमें से एक कम कर दो, क्योंकि पूर्व का वर्गस्थान चाहिए हमको। जैसे हमने 100 का वर्गमूल है 10, 100 के पूर्व वाला वर्गस्थान कौन सा होगा? तो 10 में एक माइनस करो, उसका वर्ग करो। ऐसे ही जघन्य परिता संख्यात का वर्गमूल करो, उसमें से एक माइनस करो और उसका वर्ग करो। तो अधस्थ यानी असंख्यात के नीचे क्या होते? तो संख्यात होते, तो संख्यात में से वो उत्कृष्ट वर्गस्थान में ले जाए। यही बात आगे लगाना, अनंतों में लगाना। जघन्य परिता अनंत, इन्होंने यहाँ 256 मान लिया है, तो वो जो वर्गस्थान है तो उसके पहले असंख्यात में उत्कृष्ट वर्गस्थान कौन सा होगा? तो 256 हमने वर्ग माना है, उसका वर्गमूल होगा 16। 16 में से कम कर दो 15, 15 का वर्ग करो, कितना हुआ? पासा पासा 25, 1 2 2, 225। तो 225 हो जाएगा, और वो 256 था, नहीं 256 से पूर्व वाला वर्गस्थान कौन सा है? तो 225। ये यहाँ कहना चाहते हैं। फिर से यहाँ हम पढ़ेंगे, इस धारा में जघन्य स्थान एक तो वर्ग रूप ही है, जघन्य असंख्यात 16 का वर्गमूल निकाल कर उसमें से एक घटाना, 16 का वर्गमूल 4 है, उसमें से एक घटाना 3 आ गए, जो अवशेष बचे उसकी कृति यानी वर्ग करना, यानी 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। जो प्रमाण प्राप्त हो वह असंख्यात के अधस्तन वर्ती, अधस्तन करते थे उसके पूर्व वाले नीचे के संख्यात का कृति धारा में उत्कृष्ट भेद है। इस वाक्य का अर्थ ख्याल में आया? जैसे अंक संदृष्टि मान लो जघन्य असंख्यात का प्रमाण 16 है, उसका वर्गमूल 4 प्राप्त हुआ, 4 में से 1 घटाया तो 3 रहे, 3 का वर्ग 9 प्राप्त हुआ। असंख्यात के नीचे जो संख्यात है इस धारा में संख्यात का उत्कृष्ट 9 है, ये हमारे उदाहरण में है। वैसे अंक संदृष्टि में उत्कृष्ट संख्यात 15 माना गया है, और 9 के बाद 10 को आदि लेकर 15 पर्यंत सभी संख्याएं 9 के अंक से बड़ी है, किंतु वे किसी भी संख्या के वर्ग से उत्पन्न नहीं हुई है, यानी वो किसी का वर्ग नहीं है। हमने जो संख्या मान ली है, 16 हमारा जघन्य असंख्यात था, 15 हमारा उत्कृष्ट संख्यात है, पर 15 भी वर्ग संख्या नहीं है, 14 भी नहीं है, इस तरह से हम नीचे नीचे आते, 13 भी नहीं, 12 भी नहीं, 11 भी नहीं, 10 भी नहीं, 9 हाँ वो वर्ग रूप संख्या है, किंतु वे किसी भी संख्या के वर्ग से उत्पन्न नहीं, अतः उत्कृष्ट स्थान को प्राप्त नहीं हुई। 9 की उत्पत्ति 3 के वर्ग से हुई है, इसलिए इस धारा का उत्कृष्ट 9 ही है। ये जो हमने पढ़ा उसका अर्थ ख्याल में आया कि नहीं? वो क्या संदृष्टि ली क्या वो सब भूल जाओ। हमने ये बात देखी, तो जघन्य जो असंख्यात है वो वर्ग रूप स्थान है, उसके नीचे की संख्या असंख्यात के नीचे की संख्या संख्यात होती है। तो संख्यात में जो उत्कृष्ट वर्ग स्थान कौन सा होगा, तो जघन्य असंख्यात का वर्गमूल करो, उसमें से एक कम कर दो और फिर उसका वर्ग बनाओ। यदि हमने 16 मान लिया तो हमने उसको 9 कर दिया, यदि 256 को मान, कोई भी अन्य अन्य संख्या लो तो उसका अलग बात आ जाएगी, उसका कैलकुलेशन अलग होगा। इस धारा में जघन्य परिता संख्यात, जघन्य युक्ता संख्यात, जघन्य असंख्याता संख्यात, जघन्य परितानंत, जघन्य युक्तानंत, जघन्य अनंतानंत और उत्कृष्ट अनंतानंत है। क्या कहना चाहते हैं, कौन सी धारा चल रही, याद है ना क्या, भूल गए, कृति धारा, यानी सभी वर्ग स्थान है। तो जघन्य परिता संख्या जो है वो वर्ग रूप स्थान है, जघन्य युक्ता संख्यात भी वर्ग रूप है, क्योंकि जघन्य परिता संख्यात को वर्ग रूप जो है उतनी बार लिखकर आपस में फिर गुणा करना है, तो ये भी वर्ग रूप स्थान है। जघन्य असंख्याता संख्यात भी जघन्य युक्ता संख्यात का वर्ग है, इसलिए ये भी वर्ग रूप स्थान है। जघन्य परितानंत ये भी वर्ग रूप स्थान है, जघन्य युक्तानंत, क्योंकि जघन्य परितानंत को भी निकालने के लिए वो वर्गित संवर्ग करते गए थे हम, यानी वो किसी का वर्ग ही रूप ही स्थान है। जघन्य युक्तानंत ये भी वर्ग रूप है, जघन्य अनंतानंत ये भी जघन्य युक्तानंत का वर्ग है, ये भी वर्ग रूप स्थान है। और केवल यहाँ उत्कृष्ट अनंतानंत है उसको इसमें इंक्लूड कर दिया, वो भी वर्ग रूप स्थान है, बाकी सब जघन्य के भेद लिए। किंतु उत्कृष्ट संख्यात ये ऑड फिगर है, और भले ऑड हो, ऑड भी फिगर वर्ग हो सकती है जैसे 9 का अंक है, परंतु ये वर्ग रूप नहीं है, इतनी बात बतानी है। उत्कृष्ट संख्यात, उत्कृष्ट परिता संख्यात, उत्कृष्ट युक्ता संख्यात, उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात, उत्कृष्ट परितानंत और उत्कृष्ट युक्तानंत नहीं है, नहीं है ने उत्कृष्ट वो वर्ग स्थान नहीं है, क्योंकि उसके नेक्स्ट वाला जो स्थान है, नेक्स्ट वाले का जघन्य वो वर्ग स्थान होने से ये संख्याएं वर्ग स्थान नहीं है, क्योंकि ये जो आगे आगे जाएंगे एक के डिफरेंस से कोई वर्ग स्थान नहीं होता, क्योंकि एक का वर्ग एक और दो का वर्ग चार है, उसमें भी तीन का डिफरेंस है, और चार और नौ में पांच का डिफरेंस है, और नौ और सोलह में और डिफरेंस बढ़ जा रहा है। तो ये जो संख्या है जघन्य असंख्यात और उत्कृष्ट संख्यात, तो जघन्य असंख्यात यदि वर्ग स्थान है तो उत्कृष्ट संख्यात वो वर्ग स्थान नहीं हो सकता, इसलिए क्या क्या नहीं है बताएं। उत्कृष्ट संख्यात भी वर्ग स्थान नहीं है, उत्कृष्ट परिता संख्यात भी वर्ग स्थान नहीं है, क्योंकि वो जघन्य युक्ता संख्यात से एक कम वाला है। उत्कृष्ट युक्ता संख्यात भी वर्ग स्थान नहीं है, क्योंकि जघन्य असंख्याता संख्यात से एक कम है। उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात भी वर्ग स्थान नहीं है, क्योंकि वो जघन्य परितानंत से एक कम है। उत्कृष्ट परितानंत भी वर्ग स्थान नहीं है, क्योंकि वो अनंतानंत से युक्तानंत से एक कम है, जघन्य युक्तानंत से। उत्कृष्ट युक्तानंत भी वर्ग स्थान नहीं है, क्योंकि वो जघन्य अनंतानंत से एक कम है। इसलिए अपने अपने उत्कृष्ट से उपरितन जघन्य के वर्गमूल में से एक कम करके वर्ग करने पर कृति धारा में अपना अपना उत्कृष्ट स्थान उत्पन्न होता है। यानी यदि हमको परिता संख्यातों में अगर उत्कृष्ट स्थान निकालना है तो परिता संख्यात के बाद का कौन सा जघन्य आता है, जघन्य युक्ता संख्यात, उसमें से एक कम, उसमें उसका वर्गमूल करो, उसमें से एक कम कर दो और फिर उसका वर्ग बनाओ, यही तरीका है। अब पढ़ेंगे आगे, ये तो हमने कृति धारा देखी, इसमें एक दो तीन चार सभी संख्या जो कंटिन्यूएशन में एक एक से बढ़ती हुई जो संख्या है उनके वर्ग करना, और वे वर्ग ही इस धारा के स्थान है। तो टोटल स्थान कितने हो गए, जो अंतिम वर्ग है उसके वर्गमूल प्रमाण वर्गस्थान हो गए। हमारा अंतिम स्थान है केवल ज्ञान, उत्कृष्ट अनंत अनंत, उसका वर्गमूल है केवल ज्ञान का प्रथम वर्गमूल। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कंटिन्यूअस एक एक संख्या बढ़ते हुए केवल ज्ञान का जो वर्गमूल है उस प्रमाण इसमें स्थान हो गया। यानी गिनने ना, कितने स्थान है उसको गिन रहे हैं। जैसे 100 में हमने स्थान गिने, 1 भी स्थान है, 4 भी है, 9 भी है वगैरह, तो 10 टोटल स्थान होते हैं। वो कैसे निकाले? 100 का वर्गमूल प्रमाण इसमें स्थान हो गया। तो पनट्टी यदि हम अंतिम स्थान मानते हैं वर्ग का, तो इसमें कितने स्थान हो गए वर्ग स्थान? हाँ, कितना है? 256। इतने स्थान हो गए उसमें वर्ग के। अब आगे बढ़ते हम, अथ अकृति धारा उच्चते। अभी जो कृति नहीं है उस सबको अकृति कहेंगे। तो अकृति के पहले कोई डिफरेंट एग्जाम्पल्स बताएंगे, अकृति धारा के शुरुआत शुरुआत के बताएंगे, उसको पढ़कर नहीं बताने। अब जो कृति नहीं है वो सब अकृति है, तो क्या क्या कहेंगे हम? कौन कौन सी संख्या गिनाएंगे? वर्ग नहीं, हाँ, जिसका वर्ग नहीं होता वो नहीं, जो वर्ग रूप संख्या नहीं है। 11 को क्यों ले रहे? 2, 3, 5, 6, 7, 8 जो वर्ग रूप नहीं है, जिसका वर्ग रूप नहीं, जो संख्या स्वयं वर्ग रूप नहीं है। देखो, 1 है तो वर्ग है, उसके बाद का वर्ग है 4, तो बीच वाले 2 और 3 संख्या है वो वर्ग रूप नहीं है, वो अकृति है। 4 संख्या वर्ग है, 2 का वर्ग है, उसके बाद तो 9 आने वाला है, 3 का वर्ग 9, तो बीच में 5, 6, 7, 8 ये अकृति है, अवर्ग है। 9 है वर्ग, और 9 के बाद का वर्ग आने वाला है 16, तो 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये अकृति है। अब 16 ये कृति है, 16 के बाद 25 आएगा कृति, तो 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ये अकृति होगी। इस तरह से गिनना आगे, शुरुआत में तो अकृति थोड़ी है, बाद में तो अकृतियां इन्हें बढ़ेगी ना स्थान। हाँ, यानी एक वर्ग से दूसरे वर्ग तक के बीच के जो स्थान सारी संख्याएं है वो सारे अकृति धारा में आएंगे।
26 से 35, 36 है तो 37 से 48, इस तरह। हाँ, तो अकृति धारा,
अकृति धारा में अंत में क्या क्या गिनेंगे? अंत में क्या क्या गिनेंगे? हाँ, केवल ज्ञान इटसेल्फ वर्ग है, केवल ज्ञान माइनस 1, वो उसका अंतिम स्थान है। -2, -3, -4 ऐसे करते चले जाओ। वर्गमूल में 1 माइनस करके जो वर्ग हुआ था वो अंतिम, केवल ज्ञान का अंतिम वर्ग है। उसके पहले वाला वर्ग कौन सा है? तो उसके वर्गमूल से 1 कम कर दो उसका वर्ग, वो कितनी संख्या होगी अनंत उनकी, वो सारे अकृति धारा में आ जाएगी। तो इसके स्थान टोटल कितने हो गए? 1 से 100 तक गिनना। 1 से 100 में अकृति धारा के स्थान कितने हो गए? 90। आसान है कि नहीं? हमको गिनते नहीं देना है, तो अभी टोटल में मैंने करके बताओ।
हाँ,
बहुत अच्छा, केवल ज्ञान माइनस उसका प्रथम वर्गमूल, जो संख्या आएगी हाँ वो अकृति धारा के टोटल। अरे ठीक है, पर हमको ऐसा ही लेना है ना कि हमने 1 से 100 तक घटित करके आपको बताया, वो हमें एक्चुअल में क्या होगा? देखो कितने का वर्ग हो सकता है, 1, 2, 3, 4 दस, 100 तक गिनो, 1 से 10 का ही वर्ग हो सकता है, उतने वर्ग स्थान हो उसके वर्ग रूप संख्या होगी। 1 से 10 संख्या है तो कृति उतने ही वर्ग हो गए ना, जो इन संख्याओं के ही वर्ग हो सकते हैं, क्योंकि अंतिम वर्ग स्थान 100 है तो उसका वर्गमूल 10 है, तो इसमें दस ही वर्ग स्थान है, एक से सौ तक दस ही वर्ग स्थान है, दस ही कृति है, तो दस को छोड़कर बाकी सभी अकृति है। हाँ देखो अभी यहाँ पढ़ेंगे, अभी तो हमने पढ़ा भी नहीं है। अथ अकृति धारा उच्चते, यानी अकृति धारा का स्वरूप अब कहेंगे। दुप्पहुदिरुव वज्जिद केवल नाणावसान मकदीये शेषदिहि विषमं वा सपदूणं केवलं ठाणं द्विप्रभृतिरूपवर्जित केवल ज्ञानावसानमकृतौ शेषविधि विषमा वा स्वपदोनं केवलं स्थानम्। गाथा का अर्थ देखते हैं। दुप्पहुदी यानी दो से शुरुआत होती है, दो को आदि लेकर अंतिम क्या है, रूव वज्जिद केवल नाण। रूव है एक संख्या, रूव का अर्थ होता है एक संख्या, वज्जित ने वर्जित करना, एक कम किसमें से, केवल ज्ञान में से, तो एक कम केवल ज्ञान पर्यंत, केवल ज्ञानम अवसानम यानी वहां तक, वो अंतिम स्थान है, अवसान यानी वो तो एंड होना उसका। अकृति धारा है अकृतव, इस धारा की शेष विधि विषम धारा सदृश है, केवल ज्ञान के प्रथम वर्गमूल से कम, केवल ज्ञान के प्रथम वर्गमूल से कम इस धारा के स्थान है, केवल ज्ञान में से वो कम कर देना है। यहाँ क्या लिखे, कृति स्थान रहितत्वात् स्वप्रथम मूलोनम केवल ज्ञानम, ये इसमें भी एक रह गया है, केवल ज्ञान के प्रथम वर्गमूल से कम केवल ज्ञान ऐसा चाहिए। देखो केवल ज्ञान के प्रथम वर्गमूल से कम किसमें से कम करना है, नहीं
समझे।
देखो ऊपर संस्कृत में देखो, कृति स्थान रहितत्वात् स्वप्रथम मूलोनम केवल ज्ञानम, यानी कृति स्थान से रहित ये स्थान, इसमें इतने वर्ग स्थान होते हैं, अब उसका अर्थ क्या क्या है, केवल ज्ञान के प्रथम वर्गमूल से कम इस धारा के स्थान है, केवल ज्ञान के प्रथम वर्गमूल से कम केवल ज्ञान, यानी हम अपनी भाषा में लिखेंगे तो केवल ज्ञान माइनस उसका प्रथम वर्गमूल, के माइनस वर्गमूल के, ऐसा लिखो, स्क्वायर रूट की साइन मालूम है कि नहीं आपको, स्कूल में पढ़े थे ना। हाँ ऐसा करते, देखो के लिखा हमने, ये केवल ज्ञान के अभिभावक, माइनस स्क्वायर रूट की साइन करके उसके अंदर के लिखना, ये इतने उसके स्थान है, के माइनस स्क्वायर रूट के, तो हमने ये ऐसा पढ़ा, केवल ज्ञान के प्रथम वर्गमूल से कम केवल ज्ञान इस धारा के स्थान है, क्योंकि वर्ग रूप संख्याएं इस धारा में नहीं है। वर्ग रूप संख्या कितनी थी, केवल ज्ञान के वर्गमूल प्रमाण थी, केवल ज्ञान के वर्गमूल प्रमाण कृति धारा के स्थान थे, तो ये वर्गमूल प्रमाण स्थान पूरी संख्या में से माइनस करेंगे हम, विशेषण जो संख्याएं स्वयं किसी के वर्ग से उत्पन्न नहीं होती वे संख्याएं अकृति धारा की है, यानी जो संख्या वर्ग रूप नहीं है वो किसी का वर्ग नहीं है। कृति धारा की संख्याओं के अतिरिक्त यानी कृति धाराओं की संख्याओं को छोड़कर दो से प्रारंभ कर एक कम केवल ज्ञान पर्यंत की सभी संख्याएं अकृति धारा की है। जैसे दो तीन, अभी चार संख्या कृति है उसको छोड़ दिया, पांच छह सात आठ नौ को छोड़ा, फिर दस से लेकर आगे वो सब बीच बीच में सब डिक्टो कर ये ने कर दिए, तो 254, 255, 257 आदि आदि आदि, छप्पन को छोड़ा बीच में, फिर अंत में 65,535, 65,533, 533, ये सब वर्ग रूप स्थान नहीं है, 65,536 वर्ग रूप है, उसकी से पहले वाली संख्या उसको भी घटाते गए। इस धारा में वर्ग रूप अर्थात कृति धारा के स्थान नहीं मिलते। जैसे 1, 4, 9, 16, 25, 36 आदि ये क्या है, कृति धारा के स्थान है, 65,025, 65,536 ये जो कृति धारा के स्थान है इस अकृति धारा में नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये वर्ग रूप है। सर्वधारा के स्थानों में से कृति धारा के स्थान घटाकर जो शेष रहते हैं वे अकृति धारा के स्थान है। इसलिए वहां हमने वो केवल ज्ञान के प्रथम वर्गमूल को केवल ज्ञान में से घटाया था, क्योंकि केवल ज्ञान प्रमाण तो सर्वधारा के स्थान है और केवल ज्ञान के वर्गमूल प्रमाण कृति धारा के स्थान है। इस धारा की शेष विधि विषम धारा सदृश है। जैसे विषम धारा के जघन्य असंख्यात और जघन्य अनंत की उत्पत्ति, समधारा के जघन्य असंख्यात और जघन्य अनंत में एक एक अंक मिलाने से हुई थी, उसी प्रकार यहाँ भी होगी। यह हम अकृति धारा है, तो हमने विषम धारा में जो देखा था जघन्य असंख्यात समरूप संख्या है, तो कहते हैं उसमें एक लूप मिला दो तो विषम धारा का स्थान होगा वहां पर, तो ये कृति रूप संख्या है, उसमें एक मिला दो अकृति रूप संख्या हो जाएगी। असंख्यातों में अकृति का पहला स्थान कौन सा होगा, जघन्य परिता संख्यात जो कृति रूप संख्या है उसमें एक मिला दो तो अकृति वाली हो जाएगी। हमने उन्होंने सारी लिस्ट बताई थी, जघन्य परिता संख्यात भी कृति रूप है, जघन्य युक्ता संख्यात भी, जघन्य असंख्याता संख्यात भी, जघन्य वो अनंत के भी भेद बताए थे, केवल उत्कृष्ट अनंत अनंत को कृति रूप में लिया, बाकी ये जो सभी जघन्य भेद है वो सारे कृति रूप है, उसमें एक एक मिला दो तो कृति धारा का वहां वहां का पहला स्थान होगा, वहां वहां कहने परिता संख्यात का, युक्ता संख्यात का, फिर असंख्याता संख्यात का, इस तरह। इसीलिए कहते विषम धारा सदृश उसकी विधि है। इस धारा में उत्कृष्ट संख्यात, देखो ये अकृति है क्योंकि उत्कृष्ट संख्यात में एक मिला दो तो वो कृति रूप संख्या है, जघन्य परिता संख्या, तो उत्कृष्ट संख्यात क्या है, अकृति धारा वाली संख्या है। उत्कृष्ट परिता संख्यात को भी लेना, क्योंकि उत्कृष्ट परिता संख्यात के बाद वाली संख्या कौन सी, एक मिलाने पर जघन्य युक्त संख्या जो वर्ग रूप स्थान है, तो ये अकृति वाला स्थान है। तो कहते हैं जघन्य, यहाँ उत्कृष्ट संख्यात, उत्कृष्ट परिता संख्यात, उत्कृष्ट युक्त संख्या, क्योंकि इसमें एक मिलाएंगे तो नहीं, नहीं उत्कृष्ट युक्त संख्या है ना, ये किस क्या है, जघन्य परितानंत से एक कम वाली संख्या, जघन्य परितानंत है वो कृति रूप संख्या है, वर्ग रूप संख्या है, तो ये कैसे होगी, अकृति रूप है। हाँ वैसे उत्कृष्ट असंख्यात आगे का जघन्य है जो कृति रूप है, इसलिए इसको अकृति में लेना। उत्कृष्ट असंख्यात संख्यात, उत्कृष्ट असंख्यात संख्या नहीं, ये उत्कृष्ट युक्ता संख्यात के बाद उत्कृष्ट जघन्य असंख्यात संख्यात आने वाला था, इसलिए इसको अकृति लिया। उत्कृष्ट असंख्यात संख्यात के बाद क्या होगा, जगन्द परितानंत, इसलिए ये अकृति वाली संख्या है, वो कृति वाली है। उत्कृष्ट परितानंत, उसके बाद जगन्य युक्तानंत आने वाला है, वो कृति रूप है, ये अकृति रूप है। और उत्कृष्ट युक्तानंत उसके बाद नहीं, जगन्य अनंत अनंत आएगा जो कृति रूप है, इसलिए यह अकृति रूप है। शेष अर्थात उत्कृष्ट अनंत अनंत और संख्यात असंख्यात तथा अनंत के सभी जगन्य नहीं आते, उसके जगन्य नहीं आते अकृति में, कृति धारा में नहीं आते, ही अकृति में नहीं आते। अभी तक कौन कौन सी धाराएं गिनी हमने? सर्वधारा, समधारा, विषम धारा, कृति धारा और अकृति धारा, पांच हो गए ना। कृति और अकृति समझ में आई बात? कृति में मात्र वर्ग 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 स्थान को गिनना है। हाँ, वो बीच वाली सारी जो संख्या वो अकृति धारा है। अब ऐसा ही घन 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 के लेना है, एक का घन एक, दो का घन आठ, तीन का घन 27, चार का घन 64, पांच का घन 125, इस तरह से लेना, और बीच में बचे वो सारे अघन हो जाएंगे। तो इसके स्थान टोटल कितने हो गए? केवल ज्ञान का घनमूल तो नहीं निकलेगा। हाँ, तो 100 हम मान लेते हैं ना, तो 100 के पहले वाली घन रूप संख्या कौन सी है? पांच का घन 125 हो जाता है, तो चार का घन 64 ही होगा। ये 64 है, उसको आसन्न घन कहते हैं, क्योंकि 100 के पहले वाला घन कौन सा होगा? तो उसका नजदीक वाला, तो 64 हो गया, है ना? हाँ, वो तो आएगी, बहुत नीचे आएगा। जैसे हमारा घन कौन सा है? 64 हमारा घन निकला, वो किसका घन हुआ है? चार का घन। यहाँ पर भी ऐसा ही लेना है। चार क्या है? तो 100 का वर्गमूल होता है 10, 10 का आधा होता है 5, और उससे भी छोटी संख्या है 4, उसका घन है। केवल प्रथम वर्गमूल से भी छोटी संख्या से, हाँ, इसका घन होगा, तो वो आसन घन होगा। अभी हम बताएंगे यहाँ पर। अतः घन धारा कथ्य थे, जितना होता है देख लेते, 5 मिनट है अभी। इगि अड़पहुदिम केवल दल मूल सुवरी चढ़ी दठान जुदे तघणमंतम बिंदे ठाणम आसन्न घन मूलम एकाष्ट प्रभृतिम केवल दलमूलस्योपरि चटित स्थानयुते तद्धनमन्तं वृन्दे स्थानम आसन्न घनमूलम। अब यहाँ बताते हैं घन धारा का स्वरूप। इगि अड़ यानी एक, आठ, प्रभृति यानी आदि, ने एक भी घन रूप संख्या है, आठ भी घन रूप संख्या है। आठ किसका घन है? दो का। हाँ, आदि यानी इस तरह से आगे बढ़ना, कहाँ तक जाना? तो एक और आठ को आदि करके केवल ज्ञान के अर्ध भाग के घनमूल से ऊपर ऊपर, अच्छा ऐसा लिया उन्होंने, केवल ज्ञान का अर्ध भाग का घनमूल से ऊपर ऊपर जो घनमूल रूप स्थान प्राप्त हो, यानी 100 का आधा 50, उसके ऊपर जो कोई घनमूल घन रूप स्थान है, तो 50 के ऊपर का स्थान है वो 64, तो उसको लिया यहाँ पर। तो कहते हैं केवल ज्ञान के अर्ध भाग के घनमूल से ऊपर ऊपर जो घनमूल रूप स्थान प्राप्त हो, उनको केवल ज्ञान के अर्ध भाग के घनमूल में मिलाने से जो स्थान बनता है उसे आसन्न घनमूल कहते हैं। इस आसन्न घनमूल का घन ही इस घनधारा का अंतिम स्थान है। अच्छा, केवल ज्ञान के अर्धभाग के घनमूल से ऊपर, अर्धभाग का घनमूल निकाला, उसके ऊपर ऊपर जो घनमूल रूप स्थान प्राप्त हो उनको केवल ज्ञान के अर्धभाग के घनमूल में मिलाने से जो स्थान बनता है। अच्छा, ये अलग टाइप से उन्होंने बताई है। देखो विशेषार्थ बताते हैं, किसी भी संख्या को तीन बार परस्पर गुणा करने से जो संख्या आती है वह घनधारा की संख्या कहलाती है। जैसे एक गुना एक गुना एक एक होता है, दो गुना दो गुना दो, इन्हें दो का घन 8 है, तीन का घन 27 है, चार का घन 64 है, पांच का घन 125 आदि। इस प्रकार अनंत स्थान आगे जाकर केवल ज्ञान के अर्धभाग का घनमूल प्राप्त होता है। केवल ज्ञान का अर्धभाग घन स्वरूप ही है, ही कहा। ये विशेषांक का एक पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर कल फिर दोबारा पढ़ेंगे। केवल ज्ञान के अर्धभाग का घनमूल निकालकर, यानी उन्होंने पहले बता दिया केवल ज्ञान का आधा जो है वो घनमूल रूप संख्या है, घन रूप संख्या है। तो केवल ज्ञान के अर्धभाग का घनमूल निकाल कर, यानी वो घन रूप संख्या है इसलिए उसका घनमूल निकाला, उसके ऊपर एक एक स्थान चढ़ते हुए घनमूल के जो स्थान प्राप्त होते हैं उन्हें केवल ज्ञान के अर्धभाग के घनमूल में जोड़ देने से आसन्न घन प्राप्त होता है। आसन्न घनमूल प्राप्त होता है। इस आसन्न घनमूल का घन करने से जो स्थान प्राप्त होता है वही इस धारा का अंतिम स्थान है। यह आसन्न घन नहीं होता, आसन्न घनमूल प्राप्त होता है। देखो इसे आसन्न घनमूल प्राप्त होता है, ऐसा लिखो।
मूल रखना,
आसन्न घनमूल प्राप्त होता है। आपके उसमें क्या लिखा है? आसन घन लिखा है। देखो क्या कहा, केवल ज्ञान के अर्धभाग का घनमूल निकाल कर उसके ऊपर एक एक स्थान चढ़ते हुए, घनमूल के ऊपर एक एक स्थान चढ़ते हुए घनमूल के जो स्थान प्राप्त होते हैं, यानी कहाँ के कितनी संख्याओं का घन कर सकते हैं उसको घनमूल के स्थान कहेंगे, उन्हें केवल ज्ञान के अर्धभाग के घनमूल में जोड़ देने से आसन्न घनमूल प्राप्त होता है। इस आसन्न घनमूल का घन करने से जो स्थान प्राप्त होता है वही इस धारा का अंतिम स्थान है। आसन्न घनमूल से यदि एक अंक भी अधिग्रहण किया जाए तो उसका घन केवल ज्ञान के प्रमाण से अधिक हो जाएगा। अतः आसन्न मन घनमूल से आगे ग्रहण नहीं करना चाहिए। अब इसकी बात हम कल फिर पढ़ेंगे, केवल हमने एक करेक्शन किया है उसमें, आसन्न घनमूल प्राप्त होता है ऐसा होना चाहिए। यही रुकेंगे हम, विशेषार्थ से फिर दोबारा ले लेंगे। जावानी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो। मैं भाई